समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
हर दिन नया दिन, हर दिन नई चुनौती, हर दिन नया अवसर। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम दिन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं। इसी विचार के साथ स्वागत है सभी श्रोताओं का आज के न्यूज मैगजीन आज सवेरे में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार देवेंद्र। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock वी हैव अ लॉट इन स्टोर for all of you. Today being 9th of October, this day is special. How? We are going to tell you. And today being Thursday, I just want to wish everyone a very happy Thursday. I know this is the middle of the week, but then maybe you can smile a little more, live a little more today. So let's begin our program with the news headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच आज मुंबई में वार्ता होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कल 2 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। श्री स्टार्मर के साथ ब्रिटेन से एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेता चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की व्यापार और उद्योग प्रमुखों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते में दर्शाए गए अवसरों पर भी बातचीत होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will perform Darshan and Aarti at Somnath Temple tomorrow. She will also visit the Gir National Park and interact with the members of the local tribal community at Sasan Gir. On Saturday, President Murmu will perform Darshan and Aarti at Dwarkadhish Temple at Dwarka. She will also grace the 71st convocation ceremony of Gujarat Vidyapeeth at Ahmedabad.
तन्वी, अगली खबर भी गुजरात से जुड़ी है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज गुजरात के मेहसाणा में शुरू होगा। पहली बार आयोजित होने जा रहा यह सम्मेलन डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और कृषि आधारित उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता को राज्य के हर क्षेत्र तक पहुंचाना है।
The Ministry of Education, in joint collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare, will launch the Tobacco-Free Youth Campaign 3.0 today. The Ministry of Education said that this national campaign will mark a significant step towards realizing the government's vision of a tobacco-free generation. More on this from our correspondent.
This 60-day national campaign seeks to educate and empower children and youth to prevent the initiation of tobacco use, support those who wish to quit, and promote a strong culture of health and wellness across schools and institutions of higher education. The Global Youth Tobacco Survey 2019 reported that 8.4% of students aged between 13 to 15 years currently use tobacco products, with an average initiation age of just 10 years. Recognizing the vulnerability of youth, the government has adopted a whole-of-government approach to address this issue through sustained awareness, prevention and enforcement measures. Under the campaign, various activities will be organized, including World No Tobacco Quiz and School Challenge on My Government platform, counseling and support sessions for students to quit tobacco. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान को सुचारू और सुलभ तरीके से करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जमीनी स्तर पर मतदान केंद्रों में सुधार के व्यापक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप और सुलभ बुनियादी ढांचा, सुरक्षित रास्ते, साइनेज, पेयजल, शौचालय, उचित प्रकाश व्यवस्था और प्रतीक्षालय होना अनिवार्य है। मतदान केंद्रों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए। साथ ही सभी जिलों में स्थानीय कलाकृतियों और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से सुसज्जित आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये निर्देश आयोग ने न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने बल्कि मतदान की गरिमा और सुविधा को बढ़ाने के इरादे से जारी किए हैं।
US President Donald Trump has announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a US-brokered peace plan to pause fighting in Gaza and release hostages, ending the two-year-old war. Trump's announcement followed an intense day of negotiations in Sharm el-Sheikh, Egypt, a report.
The agreement's first phase includes the release of all remaining hostages held by Hamas in exchange for a number of Palestinian prisoners, alongside a phased Israeli withdrawal from Gaza. Trump's 20-point peace framework, which formed the basis of the negotiations, also calls for Hamas disarmament and an internationally supervised reconstruction of Gaza. The initial phase of the Gaza peace deal was confirmed by Israeli officials, Hamas, and mediator Qatar. In a statement, Hamas said it has reached an agreement to end the war in Gaza, saying the deal includes an Israeli withdrawal from the enclave and a hostage-prisoner exchange. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also welcomed the announcement, describing it as a great day for Israel. The agreement was reached just a day after the second anniversary of Hamas attack on Israel. Payal Sharma for Akashvani News.
Fiji has launched its first ever national child safeguarding policy, setting a new national benchmark for child safety across all sectors of the society. The new policy ensures that all services involving children are delivered in a safe, respectful, and child-friendly manner. It outlines concrete measures for institutions and organizations to prevent harm, including a mandatory child protection code of conduct, child-safe recruitment, and vetting processes such as criminal background checks and tailored risk mitigation strategies. The launch came amid growing regional concern about child protection across the Pacific, where cultural taboos, limited resources, and underreporting have often left cases of abuse hidden or unresolved.
और खेलों की बात करें तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। विशाखापत्तनम में ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। विश्व कप के कल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 222 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 37वें ओवर में 114 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों की। तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं तन्वी आपके पास?
Let's begin with Chennai. The state transport department will operate 20,378 buses during Diwali season to enable people to travel to their native hometowns. According to the Minister for Transport, S.S. Shivashankar, 5,900 special buses will be operated to different destinations between 16th and 19th of this month. In return, 4,253 special buses will be operated to Chennai after Diwali for 3 days. And apart from this, 6,110 special buses will be operated between our major cities in the state to clear the festival rush. And moving towards Bangalore, Bangalore Nama Metro is set to begin preliminary work on Phase 3A, a 36.59 km corridor connecting Sarjapur in the southeast to Hebbal in the north via the city centre. The Bangalore Metro Rail Corporation Limited has floated tenders worth 6.86 crore rupees for geotechnical investigations in 4 packages, with November 3rd as the deadline for bid submission. Contractors will have 150 days to complete the study, which marks the first stage of groundwork assessing soil and rock conditions to design foundations for elevated piers and underground tunnels. Estimated to cost 28,405 crore rupees, that is 776.3 crore rupees per kilometer, Phase 3A, also known as the Red Line, is Nama Metro's costliest project till date and is targeted for completion by 2031. And moving towards Hyderabad, the Telangana State Election Commission is set to issue the first notification for elections overdue to the rural local bodies later today as scheduled. There was a dilemma over the issuance of the notification following the cases filed against the 42% reservation to backward classes communities in local bodies. The petitioners alleged that the government's decision was against the constitutional principles as well as the Supreme Court's judgment capping the overall reservations at 50%. The Telangana High Court took up hearing on the petitions yesterday but refused to stay the election process which was set in motion by the TSEC. Accordingly, the State Election Commission has decided to go ahead with the process. So these were the updates from three cities, that's Chennai, Bangalore and Hyderabad. Now Devendra, what do you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji. दिल्ली से शुरुआत करें। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में 1,816 करोड़ रुपए की लागत वाली आधुनिक सीवरेज नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य यमुना नदी को प्रभावित करने वाली दशकों पुरानी जल और सीवरेज समस्याओं को दूर करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छोटे उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण प्राप्त करने की सुविधा देने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट CGTMSE के बीच हुई साझेदारी के तहत ये सुविधा प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे बैंकों का जोखिम घटेगा और हजारों उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी। राजधानी के दिल्ली हाट में खादी महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में देश भर के कलाकार अपने हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो यहां भारी संख्या में पहुंचने वाले लोगों को खूब भा रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान को बल देते हैं तथा खादी बुनकरों की आय में वृद्धि करते हैं। प्रदर्शनी में साड़ियां, रेडीमेड कपड़े, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, हस्तनिर्मित आभूषण, हथकरघा उत्पाद और खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मुंबई चलते हैं, जहां मुंबई में बुधवार को लिंग और जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महिला सभाओं को मजबूत बनाने, महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त करने और बाढ़, सूखे तथा भीषण गर्मी से निपटने के लिए स्थानीय जलवायु बजट आवंटित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में बदलती जलवायु का मुकाबला करने में महिला सरपंच अग्रिम पंक्ति में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य के विमानन क्षेत्र में क्रांति लाएगा और महाराष्ट्र की जीडीपी में 1% की वृद्धि कर सकता है जिससे हजारों की संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जो भारत के विमानन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हवाई अड्डे को नए भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये हवाई अड्डा भारत की महत्वाकांक्षा, दक्षता और क्षमता का प्रमाण है। और चलते हैं कोलकाता, जहां भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता स्थित अलीपुर मौसम केंद्र के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 10 अक्टूबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। तो महानगरों की खबरें हो गई तन्वी, और साथ में कोलकाता का मौसम भी हमने बता दिया और बाकी महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं
जी।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सुबह 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जिससे मौसम काफी खुशनुमा और ठंडा सा रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा, दिन में पारा 33 डिग्री तक जा सकता है। और कोलकाता में तापमान भी बता देते हैं कैसा रहेगा, 24 डिग्री और 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा?
Absolutely. Chennai is expected to have thunderstorm accompanied by lightning. The minimum temperature was 25 degrees and maximum will be around 32 degrees. Bangalore is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और मौसम के बाद अब बात इतिहास में 9 अक्टूबर की। आज है टेरिटोरियल आर्मी डे, जो समर्पित है उन वीर सपूतों को जो आम नागरिक होते हुए भी जब देश को उनकी जरूरत पड़ती है तो वर्दी पहनकर सैनिक बन जाते हैं। जी हाँ, हम आज मना रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी डे। टेरिटोरियल आर्मी यानी वो शक्ति जो हमारे बीच से ही उठती है, कभी किसान, कभी शिक्षक, कभी इंजीनियर, और जब वक्त आता है तो यही लोग सीमा पर, बाढ़ में, आपदा में, हर मोर्चे पर भारत माता की सेवा में डट जाते हैं। ये हैं सच्चे नागरिक सैनिक, जो ये साबित करते हैं कि देशभक्ति कोई पेशा नहीं, एक भावना है जो दिल में बसती है। आज हम सभी टेरिटोरियल आर्मी के हर जवान को नमन करते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं।
And today is also World Sight Day. It's observed globally on the second Thursday of every October. This day is an opportunity to highlight the importance of protecting our eyes and vision, raise awareness of vision impairment and blindness, and promote eye and vision care. The observance of World Sight Day today also presents an opportunity to encourage individuals to reconsider their daily habits and adopt preventive measures against vision impairment and also blindness. And today is also World Post Day. It was declared World Post Day by the Universal Postal Union Congress held in Tokyo, Japan in 1969. And since then, countries across the world participate annually in the celebrations.
जी, और कई देशों में डाक विभाग इस आयोजन का उपयोग नए डाक उत्पादों और सेवाओं को पेश करने या उनका प्रचार करने के लिए करते हैं। एक तिहाई से ज्यादा लोग ऑफलाइन है और आधे से ज्यादा व्यवसाय ऑनलाइन व्यापार नहीं करते। ऐसे में डाकघर, जो अक्सर दूर दराज के इलाकों में एकमात्र सार्वजनिक पहुंच बिंदु होते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं।
Under the theme hashtag post for people, local service, global reach, this year's campaign highlights the post as a vital public service rooted in communities and driven by people.
जी, और 9 अक्टूबर की अन्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउट वायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी, और 1962 में अफ्रीकी देश युगांडा गणतंत्र बना था।
एंड द 1975 ईयर आंद्रे दमित्रियेविच साखरोव, द सोवियत फिजिसिस्ट हु हेल्प्ड बिल्ड द यूएसएसआर फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर एंड वायलेशंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। साखरोव वाज फॉरबिडन बाय द सोवियत गवर्नमेंट फ्रॉम पर्सनली ट्रैवलिंग टू ऑस्लो, नॉर्वे, टू एक्सेप्ट द अवार्ड।
जी, और वर्ष 1997 में इटली के अभिनेता और लेखक डारियो फो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
इन द ईयर 2004 ऑन दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन अफगानिस्तान्स हिस्ट्री वोटर्स वेंट टू द पोल्स टू चूज अ प्रेसिडेंट, सिलेक्टिंग हामिद करजाई हु हैड सर्वड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट आफ्टर द फॉल ऑफ द तालिबान रेजिम इन 2001।
और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और स्मरण करते हैं उन विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले नमन गोपबंधु दास को। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि और साहित्यकार गोपबंधु दास की आज जयंती है। गोपबंधु दास जी ओडिशा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोपबंधु दास को उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में इन्हें दरिद्र सखा के रूप में भी लोग याद करते हैं। गोपबंधु दास ने उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्ण ओडिशा राज्य बनाने के लिए प्राण प्रण से प्रयास किया। उत्कल के दैनिक पत्र समाज के संस्थापक भी थे। गोपबंधु दास को ओडिशा में राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अनेकों बार जेल यात्राएं की। उनकी जीवन गाथा में समाज के लिए समर्पित तमाम घटनाएं हैं। वर्ष 1909 में गोपबंधु दास ने साक्षी गोपाल में एक हाई स्कूल की स्थापना की। ये विद्यालय शांति निकेतन की भांति खुले वातावरण में शिक्षा देने का एक नया प्रयोग था। और भारत में ब्रिटिश सरकार अनेकों ऐसे कानून लागू करती थी जिनके बहाने विदेशी व्यवस्था का विरोध करने वालों को किसी भी प्रकार से कड़ी सजा मिले। ऐसा ही एक कानून था रोलेट एक्ट, जिसे 13 अप्रैल 1919 में लागू किया गया था। उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था और क्रांतिकारियों को दंडित करना था। इसी कानून की आड़ में सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब से राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में लगे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 1919 में पंजाब में कई आंदोलनों की अगुवाई की। उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका अदा की और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रिहाई के बाद सैफुद्दीन किचलू को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। किचलू उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने आजादी से पहले से भारत विभाजन का विरोध किया था। आज ही के दिन स्वाधीन भारत में 1988 में सैफुद्दीन किचलू ने अंतिम सांस ली थी।
Today is the birth anniversary of John Lennon, an English musician and activist. He gained global fame as the founder, co-lead vocalist and rhythm guitarist of the Beatles. John Lennon's songwriting partnership with Paul McCartney remains the most successful in history. In 1956, he formed the Quarrymen, which evolved into the Beatles in 1960. John initially was the group's de facto leader, a role he gradually seemed to cede to Paul McCartney, writing and co-writing songs with increasing innovation, including Strawberry Fields Forever, which he later cited as his finest work with the band. And he had multiple songs, the hit numbers Be It, All You Need Is Love, Give Peace a Chance, and Instant Karma, and there were collaborations with Elton John and Bowie, David Bowie. So all the songs have been so outstanding. Let's just enjoy one of the track by him titled Mind Games. John Lennon. He was inducted into the Songwriters Hall of Fame in 1997 and the Rock and Roll Hall of Fame twice as a member of Beatles in 1988 and as a solo artist in 1994.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख साहित्यकार रहे राजा लक्ष्मण सिंह की। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 को आगरा में हुआ था। उन्होंने हिंदी को हिंदी संस्कृति के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया। आगरा से प्रजा हितैषी पत्र निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूतम का हिंदी में अनुवाद किया। भाषा के संबंध में लक्ष्मण सिंह का मत था कि हिंदी और उर्दू अलग अलग हैं। यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। आप शब्द प्रतिशब्द के अनुवाद को उचित मानते थे। और स्मरण हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविन्द्र जैन का। उन्होंने 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी और विरासत में छोड़ गए थे असंख्य भजन और सुमधुर संगीत। रविन्द्र जैन की प्रसिद्धि विशेष रूप से भजन गायक के रूप में भी रही। रविन्द्र जैन मधुर धुनों के रचनाकार के साथ बेहतरीन गायक थे। रविन्द्र जैन 1968 में मुंबई पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात लोकप्रिय गायक मुकेश से हुई। उनका संगीतबद्ध किया पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को रिकॉर्ड किया गया था और इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी ने। श्रोताओं, रविन्द्र जैन के संगीत से सजे और उनके अपने स्वर में सुमधुर गीतों की एक लंबी सूची है, जिनमें से कुछ की झलक आपके लिए प्रस्तुत है।
जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप गाता चल, ओ साथे गुनगुनाता चल, गीत
गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल।
आज ही के दिन यानी 9 अक्टूबर 2024 को देश ने अपना रत्न खोया था, जिसे हम और आप रतन के नाम से जानते हैं। आज पूरा देश याद कर रहा है अपने महान उद्योगपति, दूरदर्शी और करुणा के प्रतीक रतन टाटा जी को। उनका नाम केवल टाटा समूह का पर्याय नहीं था, बल्कि भारत की सच्ची आत्मा, सेवा, ईमानदारी और मानवीय संवेदना का प्रतीक भी था। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियां अधिग्रहित की, जिसने भारत को वैश्विक व्यापार की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया। और जब उन्होंने आम भारतीयों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की कार टाटा नैनो बनाई, तो वो सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि आम आदमी के सपनों के साथी बन गए। वो कहते थे, व्यवसाय केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इसी सोच ने उन्हें न सिर्फ एक सफल कारोबारी बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसने वाला इंसान बना दिया। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके काम, उनके विचार और उनके संस्कार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर आज भारत उन्हें नमन कर रहा है।
Yes, Ratan Tata, we are talking about, no matter how much we talk about him, what all we talk about him, it will always be less. One of India's most internationally recognized business leaders and philanthropist. So, in 2009, Tata spoke at a school alumni function about his dream for his country, India, where every Indian has an equal opportunity to shine on merit. He said, in a country like ours, you have to try and lead by example, not flaunt your wealth and prominence. We have a small interview by him where he's talking about how you can do things and never be disappointed.
People say this can't be done. It's your job to remove those myths and to get things done. In many ways, we have been critical of and saddened by what has or has not happened in our country. To a great extent, this has been a function of we can't do this, or it can't be done. Do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. You, in the years ahead, are going to be leaders of this country and shaping the destiny of this country.
Today is also the death anniversary of Oskar Schindler, a German industrialist, humanitarian and member of the Nazi Party who is credited with saving the lives of 1,200 Jews during the Holocaust by employing them in his enamelware and ammunitions factory in occupied Poland and protectorate of Bohemia and Moravia. So anyone who has seen the movie The Schindler's List, you know Oskar Schindler, who he is and what exactly he did for the Jews who were not in the safe conditions during the wartime. And the violin, that the music you are listening in the background is from the same film, and that is the theme of the film. So let's just hear it loud and clear. Oskar Schindler, he died on this day, 9th of October 1974 in Germany, and was buried in Jerusalem on Mount Zion, the only former member of the Nazi Party to be honored in this way. Oskar and his wife Emily Schindler were named Righteous Among the Nations by Yad Vashem in 1993.
साज बजाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि जिस साज को वो साधते हैं उसी के पर्याय बन जाते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खां की, जिनका आज जन्मदिन है। 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में जन्मे अमजद अली खां सेनिया घराने से संबद्ध हैं। 1963 में जब वो 18 वर्ष के थे, अपनी प्रस्तुति के लिए अमेरिका की पहली यात्रा की और तब से आज तक अनवरत अनेक प्रस्तुतियों में उन्होंने अपने संगीत रसिकों का, श्रोताओं का मन मोहा है।
आज Ustad Amjad Ali Khan. He was awarded India's second highest civilian honor, Padma Vibhushan, in 2001 and India's third highest civilian honor, Padma Bhushan, in 1991 and Padma Shri in 1975.
Ji. और इसी सुमधुर संगीत के साथ अब हम चाहेंगे अपने श्रोताओं से आज सवेरे न्यूज मैगजीन को यहीं संपन्न करने की अनुमति.
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार.